अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम फिक्र नज़र और मैं हूं आपका मेज़बान हुसैन महदी। आज के प्रोग्राम में हम ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करेंगे जिस पर निस्बतन कम बातचीत की जाती है, लेकिन हालिया चंद बरसों में देखने में आया है कि आर्जी शादी या जिसे निकाह मुता भी कहा जाता है, उसका ख़ास तौर पे मगरबी ममालिक और बरतानिया में रहने वाले नौजवान लड़के और लड़कियों में उसका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। एक बरतानवी नशरियाती इदारे की तहकीक के मुताबिक निकाह मुता या आर्जी शादी का इस्तेमाल ना सिर्फ शिया बल्कि सुन्नी नौजवानों की तरफ से भी काफ़ी किया जा रहा है। उसकी वजह यह है क्योंकि यहाँ पर ख्वातीन हज़रात, जैसे आपको मालूम है कि जो यूके और मगरबी ममालिक का कल्चर है, इधर गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का कॉन्सेप्ट होता है जिसमें शादी से पहले एक दूसरे को जानना ज़रूरी होता है। इसी का शायद मुतबादिल जो है वो निकाह मुता या आर्जी शादी के तौर पर जो है वो सामने आ रहा है, जिस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं। मेहमानों का तारुफ करवाऊंगा। मौलाना हसन मारूफी, अस्सलामु अलैकुम मौलाना
अस्सलाम
साहब।
रहमतुल्लाह।
और मेरी दूसरी गेस्ट हैं सैयदा सना फातिमा, अस्सलामु अलैकुम सना।
वालेकुम अस्सलाम।
दोनों मेहमानों को खुश आमदेद कहूँगा।
शुक्रिया।
मौलाना साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ निकाह मुता या जिसे आर्जी शादी भी कहा जाता है, जो हम लोगों को जो मालूम है कि ख़ास तौर पे जो साउथ ईस्ट एशिया या जो इंडिया पाकिस्तान से मुसलमान आते हैं, उन्होंने इसे सुना तो होता है लेकिन इसका कोई जो है उन्होंने अमली मुशाहिदा नहीं देखा होता। लेकिन यहाँ जैसे मैंने जिक्र किया बरतानवी नशरियाती इदारे का, उनके मुताबिक काफ़ी तेज़ी से ये नौजवान मुसलमान लड़के और लड़कियों में मकबूल हो रहा है। तो पहले तो मैं चाहूँगा कि इसकी क्या वजह है आपकी नज़र में कि ये क्यों मकबूल हो रहा है, और फिर हम आएंगे कि इसकी इस्लाम में किस हद तक इजाज़त है और किन शराइत के साथ आप ये कर सकते हैं।
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इस्लाम एक जामे मज़हब का नाम है, दीन है। ये लफ्ज़ से बहुत सारी बोली जाते हैं, मैं उस पर खुद बोल करके जो है सोचता हूँ कि इसकी वजाहत भी होनी चाहिए। दीन और मज़हब, असल में दीन दीन आसमानी है, दीन हमेशा आसमानी होता है और मज़ाहिब मसालिक जो हैं ज़मीनी होते हैं।
सही।
हर दीन में कुछ काम करने को, कुछ मानने को होते हैं। मानने वाली चीज़ों को अकायद कहा जाता है, करने वाली चीज़ों को आमाल या उसूल फ़रू। मानने वाली चीज़ें उसूल हैं और करने वाली चीज़ें फ़रूआत में हैं। उसूल
सही।
दीन, फ़रू दीन इसको कहा जाता है। ये जो मसालिक बन जाते हैं, इसी दुनिया में तहकीक करने वालों ने कुछ नज़रिया पेश किया है, उस नज़रियात के मानने वाले होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, उसी के नाम से मज़हब या मसलक वजूद में आ जाता है। बहरहाल मैं उस पर गुफ्तगू करूंगा, देर लगे खाली इस बात कहने के कि इस्लाम एक जामे दीन का नाम है। उसमें कोई रुख ऐसा नहीं पाया जाता जो तशना रह गया हो,
सही।
जिसमें कोई तशनगी हो। परवरदिगार आलम ने इंसान को जब खल्क किया तो खल्क करने के बाद यकीन उसमें बहुत सारी कुव्वतें रखी हैं, बहुत सारी ताकतें और ख्वाहिशात, तमन्नाएं और आरज़ूएं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन उसके तकमील के भी ज़राए परवरदिगार आलम ने बताए हैं। कहीं से भी इंसान के अंदर एक जर्रा बराबर भी ईमान पाया जाता होगा तो उसका ईमान किसी गुनाह करने से रोकेगा।
सही।
उसे एहसास होगा, उसे गलती का एहसास होगा, गुनाह का एहसास होगा, रुकेगा कदम और कर लेने के बाद शर्मिंदा भी होगा। तो अगर किसी गुनाह की तरफ इंसान जा रहा है तो क्या मजहब ने उस गुनाह से बचने का कोई रास्ता नहीं बताया होगा, कोई
सही।
तरीका नहीं बताया होगा? किसी एक लफ्ज़ को बोल करके खुद ही जहन में उसका एक माना बना करके उसको एक अजीब चीज़ बना देना, ये इंसान के फितने की भी एक दलील होती है कि फितना करना चाहता है। और फितना होता है
सही।
कि आपने खुद ही उसका एक माना बना लिया, आपने खुद ही उसका एक मफहूम जो है तराश लिया और उसको आपके कि आप ऐसा कर सकते हैं और आप अपनी बहन बेटी के लिए ऐसा कर सकते हैं, आपने खुद ये माना बनाया, आपने
सही।
खुद इसका मतलब बनाया। लेकिन अगर परवरदिगारे आलम ने इंसान के वजूद में ख्वाहिशात रखी हैं तो उसके तकमील के जायज रास्ते बताए होंगे,
सही।
दायमी भी और वक्ती भी। जो जायज रास्ते हैं दायमी और वक्ती, तो वक्ती उसका भी कोई नाम होगा, दायमी का भी कोई नाम है, लेकिन उस वक्ती के लिए एक खास उस मौके के लिए बोल करके अहमियत दे देना कि अगर ऐसा करना है तो क्या आप अपनी बेटी या बहन के लिए ऐसा कर सकते हैं,
सही।
एक अजीब सा लगेगा आदमी को, वो अंदर से जो है एक उसके अंदर गैरत झाके कि अभी कैसे दीन का हुक्म नहीं होता, कतन जिस तरीके से कहा जा रहा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। लेकिन कभी ये क्यों नहीं सोच सकता है कि एक इंसान उस रिश्ते में जुड़ने के बाद, हमने कोई अपनी जिंदगी को अपने हाथ से नहीं लिखा, किसी की भी मौत हो सकती है, कोई इंसान किसी वक्त कहीं जा सकता और आ सकता है,
सही।
कोई एक उम्र में आने के बाद अभी एक कुव्वत एक ताकत जो है अगर है तो कोई जरूरी नहीं कि एकदम से खत्म हो जाने वाली है, रहने वाली है, मगर ये कि वो किसी एक की मौत की वजह से, किसी एक के सफर की वजह से, किसी एक के हालात की बुनियाद पर जो है जरूरत रहती है। क्या इस दुनिया में जिना नहीं है, इस
सही।
दुनिया में इस तरह के गुनाह नहीं पाए जाते हैं, तो क्यों नहीं आदमी सोचता है कि इस तरह के मौके के लिए मजहब ने क्या चीज बताई है? क्या मजहब ऐसा कह सकता है कि किसी से जो है वही जिसको शादी कहा जाता है, जिसको वाकन शादी कहा जाता है, वो करो कि हम तुमको तलाक देंगे?
सही।
ये कौन सी बात हुई? तो आखिर किसी और नाम से कोई रास्ता बताया होगा ना कि जिसकी दीनी और दुनियावी और उसकी जिस्मानी सारी चीजों को तस्कीन भी हो, उस तस्कीन के साथ साथ यकीन भी हो कि हम खता के रास्ते पे नहीं है, दीन के बताए हुए रास्ते पे हैं, उसको आरजी और वक्ती शादी कहा जाए? आप क्यों नहीं इसको शादी कहते हैं? एक बेवा हो जाने वाली, एक वो इंसान जो मुसलसल सफर में रहता है और उसके लिए हालात नहीं है किस तरह, तो क्या उसके लिए, क्या अगर वो ख्वाहिशात गुनाह के जरिए से पूरा करना चाहेंगे तो इसका मतलब दीन और ईमान को जरूरत ही बाकी नहीं रहेगी। अगर उसके लिए आपको दीन को और मजहब को कहते हैं कि नहीं वो जामे हर चीज का जवाब देता है, तो आपको जवाब लेकर के आना चाहिए। और यकीनी तौर पर जैसे आपने कहा कि किसी भी नशरियाती अदारे ने यह बात कही है, ये सच है, तो इसका मतलब यह कि फितरत इंसान को उसी तरफ लेकर के जाती है जिस पर खालिक ने उसको पैदा किया है, और दीन फितरत के मुताबिक है, मजहब इंतहाई फितरत के मुताबिक है। अब अगर इंसान जो है फितरत की तरफ जा रहा है और कहीं ये चीज नहीं पाई जाती है, तो उसको खुद ही सोचना चाहिए कि हमारे से कोई चीज, मैं तो कहता हूं कि मजाहिब की कसरत ही बता रही है कि कहीं से कुछ कम कर दिया, कहीं से कुछ ज्यादा कर दिया, वरना एक ही चीज होती तो एक ही दीन रहता। मजाहिब का में बट जाना इस बात की दलील है कि इतने मजाहिब तो अल्लाह की तरफ से नहीं आए हैं, बटने का मतलब कि या तो हमने कोई चीज कम कर दी है अपनी फिक्र के एतबार से, या कोई चीज ज्यादा कर दी, उसी बुनियाद पर कहीं इसको अच्छा समझा जा रहा है और कहीं जो है इसको बहुत बुरा समझा जा रहा है। तो उसको तलाश करना चाहिए कि खुद कुरान ने क्या कहा है, खुद नबी करीम ने क्या फरमाया है, खुद हादिया ने दीन ने सिलसिले में क्या किया है, खुद उनके तरीक़ेकार क्या रहा है, अपने मानने वालों को क्या बताया है। तो उस पर हम माशरे से मगलूब होकर के कभी कभी उसे, और अक्सर जब बल्कि अक्सर माशरे से मगलूब होकर के कहते हैं, और कभी इंसान के जज्बात को छू करके उसको जो है कि उसको हम उसकी गैरत दिलाएं, मसलन बेजा गैरत बेजा अहम हमीयत को जगाया जाता है, उसकी जरूरत को समझे। मैं ये कह सकता हूं कि ये चीज जो है जरूरत है, न ये कि हुक्म, जरूरत पर हुक्म है, हुक्म पर जरूरत नहीं, ये भी
सही
समझे कि
सही
जरूरत के लिए, किसी जरूरत को पूरा करने के लिए मजहब जो है हमें हुक्म देता है, लिहाजा अगर कोई उसको लालच बना ले, उसको अपने जो है वाकन खाली अपने ख्वाहिशात के तकमील का जरिया बना ले, तो वो भी सही नहीं है।
सही
जरूरत है, जरूरत के बुनियाद, जब इंसान जरूरत को समझ लेगा तो उसकी अक्ल और उसकी फितरत जो है चीख के कहेगी कि ये दीन का हुक्म है, होना चाहिए।
सही मौलाना साहब, बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि जरूरत। अच्छा, इसकी जरूरत हम इस माशरे में क्यों ज्यादा पेश आ रही है? सना, मैं चाहूंगा कि आपसे इसका जवाब लूं, क्योंकि जो यहाँ पे जो तलाक की निस्बत तनासुब है वो बहुत ज्यादा
ज्यादा
है,
है जी।
और यही वजह है कि उसका हमें जो उसका नेगेटिव जो उसके हमें नुकसान नजर आया वो ये है कि यहाँ पे जो मेन माशरा है, जिस जो हम इंग्लिश लोगों की बात करें, वो अब शादियां करते ही नहीं हैं, उनके दो दो तीन तीन बच्चे हो जाते हैं और वो आरजी तौर पर ही गुजारा करते रहते हैं,
शादी
क्योंकि उन्हें फिर ये घबराहट होती है कि अगर शादी की फिर कल को तलाक होनी है, फिर जो है वो जायदाद में से अलहदगी होगी, तो वो उसको बचाने के लिए बहुत अरसे तक साथ वैसे ही रहते रहते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा दीन जो है हमें इजाजत नहीं देता इस तरह का काम करने का। और मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगा एक खातून का, जिनका वीडियो क्लिप भी मैंने देखा, और
जी
उनसे जब पूछा गया कि आपने ये क्यों किया, तो उन्होंने कहा शादी से पहले हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया बैठ के बकायदा मेरे वालिद की अप्रूवल से, और उसमें मेरे वालिद ने शिकें रखवाई कि आप ये कर
शरारती
सकते हैं,
जी
ये नहीं कर सकते, कि
सही
आप उनके वालिद या उनके भाई की गैर मौजूदगी में मिल भी नहीं सकते। तो उन खातून ने जो जिक्र किया वो ये किया कि हम चाहते थे कि हम एक दूसरे को समझ लें,
समझ
ताकि
सके
कल को बजाय इसके कि जो है वो जहनी हमानगी ना हो, उससे पहले हम समझ लें, जिसके
समझ।
लिए तमाम शराइत तय हुई थी। तो आप क्या समझती हैं कि यहाँ पे रहने वाली खवातीन के लिए इसमें एक राह है, कि बजाय इसके कि कल को तलाक हो, उससे पहले कि आप एक दूसरे को समझ लें?
बिल्कुल, जिस तरह से आपने भी उस खातून का जिक्र किया कि उसने पहले शादी से पहले, वही बात आ जाती है कि इस माशरे में रहते हुए, क्योंकि यहाँ की सोच, यहाँ की जो एटमॉस्फेयर है वो डिफरेंट है हमारे अपने ममालिक में, पाकिस्तान इंडिया की बात करूँगी,
सही
तो यहाँ के लोगों को, क्योंकि वो बच्चे अब अपने आप को बिल्कुल इन चीज़ों से स्टॉप भी नहीं कर सकते, मतलब क्योंकि आप उसी माशरे में रह रहे हो, आप स्कूल जाते हैं, आप मतलब ज़्यादा टाइम आपका उन्हीं लोगों के साथ गुजरता है। तो जिस तरह से मौलाना साहब ने बहुत खूबसूरती से बताया कि इस्लाम ने हमारे लिए कोई रास्ता मतलब ऐसा नहीं छोड़ा कि जिसको खाली छोड़ा हो, और वही बात है कि गुनाह की भी हमें इजाज़त नहीं दी। तो ये एक तरीका है कि आप अपने आप को मतलब अल्लाह का हुक्म भी आप बजा ला रहे हैं, आप कोई हराम काम भी नहीं कर रहे, और फिर दूसरी बात जो आपने खुद भी की कि मतलब यहाँ पे तलाक की शरह ज़्यादा है, जिना की शरह ज़्यादा है, तो इस तरह एक हलाल तरीके से आप एक दूसरे को जान सकते हैं, और फिर ये होगा कि आप किसी गुनाह के जुमरे में भी नहीं आएंगे, और आपकी जो बात की लाइफ है वो अच्छे से गुजर सकती है।
बिल्कुल सही। सना, हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन मौलाना साहब मैं चाहूँगा यहाँ पे एक वक्फा लें, और वक्फे के बाद मैं चाहूँगा कि आपसे जो इस्लामी जो शराइत हैं जो कुछ इसमें रखी जा सकती हैं, क्योंकि ये बकायदा कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसे नहीं है कि आपने बैठे और
यस
कहा कि जी हो गया, जिस तरह दायमी शादी का एक निकाहनामा तहरीर किया जाता है, उसी तरह इसके लिए भी शराइत हैं, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिए।
गफलत में डूबा दिल बदल दे खुदाया, फजल फरमा दिल बदल दे
या मौला।
गुनाहगारी में कब तक उम्र काटू
या मौला,
बदल दे मेरा रास्ता दिल बदल दे
या मौला।
सुनो मैं नाम तेरा धड़कनों में, मजा आ जाए मौला दिल बदल दे
या मौला।
रहूं बैठा मैं अपना सर झुका कर,
या
सुरूर ऐसा अता कर दिल बदल दे
या
खुदाया, फजल फरमा दिल बदल दे
या मौला।
खुदाया फजल फरमा दिल बदल दे। फुलत में डूबा दिल बदल दे खुदाया, फजल फरमा दिल बदल दे
या मौला।
गुनाहगारी में कब तक उम्र काटू
या मौला,
बदल दे मेरा रास्ता दिल बदल दे
या मौला।
सुनो मैं नाम तेरा धड़कनों में,
या
मजा आ जाए मौला दिल बदल दे
या मौला।
جھکا کر یا سرور سا عطا کر دل بدل دے
مولا یا
خدایا فضل فرما دل بدل دے
مولا یا مولا
خدایا فضل فرما دل بدل دے.
خوش آمدید خواتین حضرات. وقفے پہ جانے سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ کیا کیا کنڈیشنز ہیں, کون کون سی شرائط ہیں یا کون سے ایسے حالات ہیں جس میں نکاح متع یا عارضی شادی کی اسلام اجازت دیتا ہے. جی ثنا, میں چاہوں گا کہ کیونکہ آپ نے یہاں پہ تعلیم بھی حاصل کی ہے اور یہاں کئی جو نوجوان ہیں تمام دنیا سے
جی.
وہ برطانیہ میں اور مغربی ممالک میں خاص طور پہ ایک لمبے عرصے کے لیے تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں, کوئی پی ایچ ڈی کرنے آتا ہے, کوئی ماسٹرز ڈگری کرنے آتا ہے, تو عرصہ 3 سے 4 سال وہ یہاں پہ رہتے ہیں. تو کیا آپ کی نظر میں کچھ ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے آ کے یہاں پہ اس سے جو ہے وہ عارضی شادی کی ہو؟
ہاں جی بالکل, وہی جیسے آپ والی بات کہ مغربی ممالک میں لوگ بہت سے آتے ہیں پڑھائی کے لیے, بہت سے اپنے کیا کہتے ہیں جابس کے لیے, تو وہی بات آتی ہے کہ اسلام جب آپ کو ایک چیز کی اجازت دے رہا ہے, آپ کو وہ الاؤ کر رہا ہے کہ آپ, مطلب جس طرح سے کہتے ہیں نا کہ اسلام نے ہر چیز کے بارے میں ہمیں کلیئر بتا دیا ہے, ہر چیز کے بارے میں رولز ہیں, کوئی چیز ایسی ہے جو رہ نہیں سکی ہے, تو اس کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ اسلام نے اس پہ بھی اس کی اجازت دی ہے. تو بہت سارے لوگ جو ہیں اسٹوڈنٹس جو آتے ہیں یہاں پر, ان کو بھی ان کی ایک ضرورت ہوتی ہے جس طرح باقی ساری ضرورتیں ہیں, تو یہ بھی ہیں. اور کچھ لوگ جس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ وہ دائمی شادی یہاں پر رہتے ہوئے نہیں کر سکتے, اس کی فیملی کے مسئلے یا جو بھی ہے, تو اس صورتحال میں یہ ہے کہ بہت سارے میں نے بھی دیکھے ہیں اپنے جب میں اسٹڈی کر رہی تھی, تو ہمارے جو اپنے ہیں چونکہ ہمارے کلچر میں یہ چیز اتنی الاؤ نہیں ہے انڈیا پاکستان
جی,
لیکن ہم نے یہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ جو کنورٹس ہیں یا جو دوسرے ممالک سے آئے ہوئے ہیں ان کی جو سوچ ہے وہ ذرا ہم لوگوں سے مختلف ہے, تو وہ لوگ اس چیز کو پریکٹس کرتے ہیں اور وہی بات ہے کہ وہ پھر اپنے آپ کو گناہ سے بھی بچاتے ہیں, کوئی اور بھی ایسا جو ہے وہ غلط کام اس سے ان سے سرزد نہیں ہوتا. اور چونکہ پھر دیکھا جائے کہ اس کے مطلب کہتے ہیں نا کہ نقصانات بھی اس طرح سے, مطلب آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اپنی اولاد کو اس مغربی ممالک میں رہتے ہوئے جو ہے ان کے جو نیگیٹو نقصانات ہیں ان سے آپ اپنے اولاد کو بچا سکتے ہیں, تو یہی ایک طریقہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو سیف رکھ سکتے ہیں اور کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا.
بالکل صحیح.
جی
مولانا صاحب, ایک اور جو تھوڑی سی اس حوالے سے ایک مختلف آراء پائی جاتی ہیں, جب میں بھی پروگرام کے لیے ریسرچ کر رہا تھا تو میری نظر سے بھی گزرا کہ بحث ہو رہی تھی شیعہ اور سنی علماء کے درمیان, تو جو شیعہ علماء تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہ رائج تھا اور حضرت عمر کے دور تک جو ہے یہ رائج تھا, حضرت عمر نے اس پر پابندی لگائی تھی اور اس پہ پھر کافی بحث چل رہی تھی. میرا خیال ہے یہ 1400 سال سے بحث چل رہی ہے اور آج تک یہ معاملہ, کیونکہ جو میں جس پروگرام کا تذکرہ کر رہا ہوں وہ آج سے کوئی 2-3 ہفتہ پہلے ریکارڈ ہوا ہوگا, تو ابھی تک یہ سلسلہ چل رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ختم ہو گئی تھی, اہل تشیع کہتے ہیں نہیں اس کی اجازت ہے اور سرٹن کنڈیشنز میں زیادہ ہے. تو پہلے تو اس اختلاف کے حوالے سے اگر آپ مناسب سمجھیں تھوڑی سی کلیریفیکیشن, اور پھر کہ کن کنڈیشنز میں کیا اس کا کانٹریکٹ کیا جاتا ہے, کیسے اس کو جو ہے وہ پراپر لکھت پڑھت کی جاتی ہے. جی
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک اختلاف کی بات ہے, یہ حقیقت ہے کہ اختلاف تو ہے, اور میں کہا کہ اختلاف نہ ہوتا تو مذاہب و مسالک وجود میں نہیں آتے, اور شیعہ مسلک کے اعتبار سے یہ طے ہے کہ میں جب شیعہ کہتا ہوں یعنی اسلام, اسلام یعنی شیعہ, سمجھ نام آپ کے وہ بالکل قرآن سے رسول سے کہ وہیں سے چلتا ہوا آ رہا ہے, بیچ میں کسی کے پاس, اس لیے کہ ہمارے یہاں ایک حقیقت ہے کہ جو اللہ نے حلال کر دیا ہے کسی کو اس کو حرام کرنے کا حق نہیں ہے, اور جس کو حرام کر دیا ہے کسی کو اس کو حلال کرنے کا حق نہیں ہوتا ہے. تاریخی اعتبار سے طے ہے کہ دوسری خلافت میں نصف زمانہ گزرنے کے بعد جو ہے حالات کی بنیاد پر یا کسی بنیاد پر اس کو ایک چیز کو وقتی طور سے روکا جا سکتا ہے، حرام کرنا اور روک دینا کہ اب یہ چیز اتنے نہیں ہونا چاہیے، وقتی طور سے اس کو روک دیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو حرام کر دینا کسی کو حق نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک دور آ سکتا ہے، مسائل ایسے ہو سکتے ہیں کہ اس کی اجازت کی بنیاد پر اس کا جو ہے لوگ غلط استعمال کریں، غلط استعمال کرنے کی وجہ سے اس کا معاشرے پر برے اثرات پڑ رہے ہیں. دیکھ وہ ایک حکم صحیح ہے، مگر اس کا استعمال غلط ہونے لگتا ہے تو اس غلط استعمال کی بنیاد پر معاشرہ بگڑ سکتا ہے. تو کوئی بھی کہہ سکتا ابھی کیا اس طریقے سے نہیں ہوگا، کہتے ہیں، لیکن اس کو حرام کر دیں یہ قطعاً نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ شرعی اعتبار سے یعنی قرآنی اعتبار سے یہ حکم موجود ہے. اگر آپ قرآن میں پڑھیں تو پانچواں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے سورہ نساء کے 24ویں آیت ہے، جس میں قرآن نے کہا کہ میں اس آیت کو لکھ کر کے آیا تھا کہ فما استمتعتم منہن فاتہن، اگر تم نے کسی سے یہ وقتی شادی کی ہے، لفظ بھی وہی متا کا استعمال کیا قرآن نے متا کیا ہے، تو ان کا جو آج رکھا ہے اس کو تمہیں ادا کر دینا چاہیے جو واجب ہے فریضہ ہے. چونکہ شرائط کی بات بھی پوچھی ہے تو قرآن میں ہے، احادیث میں اس کا تذکرہ موجود ہے. چونکہ ہمارا پروگرام اتنا طویل نہیں ہوتا کہ ہم اس کو سارے قرآن کے آیات کو اور اس کی تفسیر کو اور پھر اس کے تاریخ کو اور پھر اس کے روایات کو نقل کریں، اس کا موقع نہیں ہے. اس کے لیے گھنٹے کا بھر کا پروگرام ہونا چاہیے، دو گھنٹے کا پروگرام ہو. لیکن یہ حقیقت اختلافات ہیں، اور اس اختلافات میں یہ بھی حقیقت ہے قرآن نے اس کو جائز قرار دی چونکہ فطری چیز ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ آدمی ہی جو ہے اس کا ایک غلط استعمال کر کے اس کو غلط راستے پر لگا دیتا، وہ بھی ہم مانتے ہیں کہ اس میں غلطیاں بھی آدمی ہی کرتا ہے، لیکن اس آدمی کرنے لگے تو اس کو اسلام کی طرف لے کے نہیں جانا چاہیے کہ اسلام کا غلط حکم جو کرنے
آدمی کئی اور غلط
کرنے لگتا ہے. جی جس کے میں نے کہا کہ اس کی جو ضرورت ہے وہ ضرورت کی بنیاد پہ کرے، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ انگلیاں اٹھیں. رجدہ آپ نے شرائط کی بات کہی، میں اس کے سلسلے میں اتنی گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہر بات کو اگر پھر فوراً وہیں سے جو ہے بات کہی جائے تو شاید واضح نہیں ہوتی، تھوڑا سا دو تین جملے پہلے سے میں گفتگو کروں. مذہب اسلام میں شادی دو، ایک مرد ایک عورت شادی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقی معنی میں دیکھیے گا تو شادی عورت لڑکی شادی وہ کر رہی ہوتی ہے اور مرد اسے ایکسیپٹ کرتا ہے، قبول کرتا ہے. تو چونکہ جو قبول کرتا ہے سارے حقوق اس کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں، اس لیے جو ہے عورت کو یعنی اس لڑکی کو حق ہے کہ وہ اپنی زندگی کے بارے میں شرائط رکھے، اور جب وہ شرائط کو رکھ دے گی اور وہ عقد جو عقد پڑھا جا رہا ہے اس میں شرائط کے ساتھ تذکرہ کر دیا جائے تو وہ شرائط تسلیم یعنی بالکل ویسے جیسے شرط رکھی گئے اس کے مطابق انسان عمل کرے گا. چونکہ یہ ضرورت کے مطابق جن کہا کہ یہ ضرورت کے لیے ہے انسان کو گناہ سے بچانے کے لیے، تو بہت ساری باتیں آئیں. بچے یونیورسٹی کالج میں جا رہے ہیں، کو ایجوکیشن والا مسئلہ ہے، الگ الگ والے مسئلہ ہے، کہیں معاشرے ہی ایسے کہ جس میں جو ہے کوئی فرق نہیں قرار دیا جاتا، ایک ہی جگہ اٹھنا بیٹھنا مسائل ہوتے ہیں، یونیورسٹی یا دوسری جگہوں پر جو ایک دوسرے سے ملنا ہاتھ ملانا مطلب بوسہ کنار کرنا ساری مسائل کے اس طریقے سے جو اس کو عیب نہیں سمجھا جاتا. تو کوئی ہمیشہ جو ہے اس کی ضرورت یہ نہیں ہوتی کہ جنسی مسئلے کے لیے ہی ہو، بلکہ ایک حرمت سے اپنے کو بچانے کے لیے کہ ہماری نظر فرض کسی کے بالوں پر نہیں پڑنا چاہیے، ہاتھ نہیں ملا سکتے ہیں، ایک ساتھ بیٹھنا یا ہنسی مذاق کرنا مثلاً وہ سب اس کی حلت کے لیے. اگر آدمی جو ہے ہمیشہ اس وقت کو جو وقتی طور پہ ہوتا ہے کہ ہم کالج کے زمانے میں ہم پڑھ رہے ہیں اتنے دنوں تک رہے ہیں اتنے دن کے لیے کرتے ہیں تاکہ ہمارے لیے کبھی ہاتھ ملا لیا بیٹھے ہیں ایک دوسرے کو گلے ملا لیا، تو وہ حرام نہ ہونے پائے. شرط لگا سکتا ہے کہ اس علت کے لیے انسان یہ چیزوں کر رہا ہے. تو آخر اگر مذہب ہمیں اتنا راستہ دے رہا ہے کہ تم اپنے دین کو بچاتے ہوئے عبادت کرتے ہوئے تم اپنے کو مسلمان واقعی باقی رکھ سکتے ہو، اور جو دنیا کا طور طریقے ہو رہا وہ اس طریقے سے زندگی آپس میں دوسرے سے جوڑ سکتا ہے، اس کے لیے کر سکتا ہے.
میں مولانا صاحب میں آؤں گا پھر آپ کی طرف کہ اس میں یہ بھی کہا ہے کہ آپ ایک کوئی کم سے کم میعاد بھی ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ بھی طے کر سکتے ہیں، اور اس میں جو آپ نے خاتون کو جو ان کے ساتھ آپ نے ان کو کمپنسیٹ کرنا ہے وہ بھی آپ طے کر سکتے ہیں. لیکن ثنا میں چاہوں گا کہ یہاں پر جو گفتگو سے تھوڑا سا آخذ ہوا کہ ایک تو یہ ہے کہ اسلام نے ہر چیز کا حل رکھا ہے، لیکن جب ہم معاشرے پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ایسے کیسز بھی نظر آتے ہیں کہ جہاں پر ہر چیز کا غلط استعمال بھی ہو جاتا ہے. تو اس کو کیسے جو ہے آپ سمجھتی ہیں کہ کیا اقدامات کیے جانے چاہیے کہ جو ایک اسلام نے ایک آپشن دی ہے उसके गलत इस्तेमाल से बचा जा सके, खास तौर पे नौजवान लड़के और लड़कियों के लिए जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं।
वही बात आ जाती है जिस तरह से मौलाना साहब ने जिक्र किया कि इस्लाम ने जो भी चीज़ें रखी उसके लिए शरायत रखे हैं, कुछ कवानीन रखे हैं, जवाबित रखे हैं। जिस तरह से सेम यही टेम्प्रेरी मैरिज मुता के हवाले से भी है कि औरत जो है वो जो भी शरायत हैं वो रख सकती है, और बाज़ उसके मुताबिक क्या कहते हैं मुज्तहिदीन के मुताबिक तो आप वो जो लड़की है वो अपने बाप की इजाज़त के बगैर कर भी नहीं सकती।
जी जी।
तो मतलब इस्लाम ने हमें इतने उसके राइट्स दे दिए, लेकिन वही बात है कि उसको मिसयूज़ करना या उसकी जिस तरह से हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारे अपने तक है। तो अगर हम इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपने जो हमारे मराजा कहते हैं उनके फतवे देखकर उस पर अमल करते हुए इस चीज़ को आगे लेकर चलेंगे तो ऑब्वियसली हम खुद भी बुराई से बचेंगे और इस माशरे को भी बुराई से बचा सकेंगे। लेकिन
अच्छा,
अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर ऑब्वियसली हमारा
अच्छा इसमें कोई कल्चर की भी फर्क आ जाता है कि जैसे फर्ज करें इंडिया पाकिस्तान से जो मुसलमान आए हुए उनके लिए टर्म बड़ी अजीब सी हो जाती
exactly,
है, जबकि हम अगर उनका मुकाबला अरब ममालिक वाले मुसलमानों से करें तो जहां तक सुन्नी जो कम्युनिटी है उसमें मिसयार है,
मिसयार,
वो
जी,
भी मुता का मुतबादिल ही है, वो उनमें काफी है, खास तौर पे मिस्र और सऊदी अरेबिया के जो और यूएई के जो कम्युनिटी यहाँ पे आबाद है उनमें, और इसी तरह जो अरब ममालिक से शिया हैं वो लोग कर लेते हैं, या वो शिया जो यहाँ पे पैदा हुए हैं बच्चे और वो जाते हैं, उनका जो है वो जाहिर सी बात है कि उनका अपने वालदैन से ज्यादा जो है वो ओपन होते हैं, वो ज्यादा बात खुल के कह देते हैं। तो आप समझते हैं कि ये कल्चर का भी फर्क है?
कल्चर का बिल्कुल फ़र्क इसको आप कह सकते हैं, क्योंकि वही बात आती है कि हमारे इंडिया पाकिस्तान में जो रहने वाली है हमारी ज़हनियत वो डिफरेंट होती है, क्योंकि हम कुछ काम करते हुए माशरे का सोचते हैं, ख़ानदान का, फैमिली का, और वही बात है कि कल्चर का इफेक्ट हम पे बहुत होता है। लेकिन इस कंट्री में रहते हुए जैसे मौलाना साहब ने भी अर्ज़ किया कि जैसे बच्चे को एजुकेशन में पढ़ते हैं, बाहर जाते हैं, वो ये सब चीज़ें देखते हैं, तो उनको एक रास्ता चाहिए कि जो मतलब वो हलाल रास्ता भी हो, कोई गुनाह भी ना कर सकें, और जो उनकी ज़रूरियात जो उनकी नीड्स हैं वो भी पूरी हो सकें। तो लेकिन वही बात है कि हर चीज़ को उसमें मतलब उसकी लाइटली हमने इसको भी नहीं लेना चाहिए, इसको हल्का नहीं लेना चाहिए, जो उसकी शरायत है उसको देखते हुए उसको मद्देनज़र रखते हुए फिर हम इस पर अमल करें तो वही बात है कि हम माशरे को और अपने आप को बुराइयों से बचा सकते हैं।
सही मौलाना साहब, क्विकली मुझे लग रहा है कि टाइम हमारे पास फिर बहुत कम रह जाएगा, जो शरायत हैं इसकी क्विकली के किन शरायत किन हालात में किया जा सकता है और क्या मिनिमम शरायत हैं? जैसे अभी सना ने तस्करा किया कि लड़की के वालदैन से इजाज़त लेना बहुत ज़रूरी है, तो ये हम उस लड़की की बात कर रहे हैं जो शादीशुदा है या जो गैर शादीशुदा है? इसी तरह क्या लड़के के वालदैन लड़के को वालदैन से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है या उसे भी ज़रूरत है?
एक तफसीली मसला है और यकीनन शादी के मसले में जो है एक हमारे यहाँ विलायत का मसला कि सरपरस्ती का मसला होता है, सरपरस्त यकीनन वालदैन होते हैं, उसमें बाप को वाकई सरपरस्ती का हक हासिल होता है। चूँकि औरत का मसला एक ऐसा मसला है जिसमें वो उस तरह से फैसला नहीं कर सकती अपने बारे में जैसे एक मर्द फैसला करता है, और अगर साइंसी एतबार में सिर्फ मजहबी बात आप साइंसी एतबार देखें कि सोचने का जो तरीका अकली एतबार से एक मर्द का होता है वो कतअन एक खातून का नहीं हो सकता है। खातून के यहाँ जज्बात गालिब होते हैं और उनकी जज्बात की गालिब होने की बुनियाद पर जो है नस्लों की तरबियत और परवरिश हो जाती है, वरना जो है जिन मराहिल से गुजरती है खातून एक बच्चे को और जिन मुश्किल से अपनी सारी नींद सारी चीज़ों को कुर्बान कर देती है, इसलिए परवरदिगार आलम ने उसको वो जज्बा दिया है कि उसकी तकलीफ को कभी नहीं सह सकती, अपने को तकलीफ में डाल सकती है मसलन, तो वो किसी भी मसले में फैसला जल्दबाजी कर सकते हैं या उसके जज्बात उसमें गालिब आ सकते हैं। इसलिए ये भी मजहब का इंतहाई फितरी हुक्म है कि उस लड़की के सिलसिले में उस बच्ची के सिलसिले में बाप की शर्त इजाज़त जो है शर्त रखी गई है, इसलिए कि वो एक तो वो बाप एक मर्द वो बेहतर फैसला उसके बारे में कर सकता है, इसलिए ज़रूरत। अलबत्त जो आपने कहा कि जब उसकी पहली शादी हो, चाहे वो पहली शादी दायमी हो या चाहे वो वक्ते और आरजी, उसमें इजाज़त शर्त किसी को, उसमें किसी के लिए नहीं बल्कि सबके यहाँ कि इजाज़त लेनी चाहिए, अगर कहीं है तो थोड़ा बहुत नरमी के साथ में, मगर इजाज़त है सबके इजाज़त लेनी चाहिए, इसलिए कि उसको फैसला करना अपनी ज़िंदगी को उस मरहले के लिए जहाँ ज़रूरत के जज्बात तो गालिब नहीं, हाँ جب ایک شادی سے ہو سکتا ہے کہ شوہر نہیں رہ گیا ہے یا طلاق ہو گئی، پھر اس کے بعد جو اس کے شرائط صحیح. نہیں رہتے ہیں.
بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. جیسے دیگر پروگرامز کے ساتھ ہمارا کہ ٹائم پھر ایک دفعہ جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے اور کئی سوالات تھے جو رہ گئے، لیکن مجھے امید ہے کہ اس مسئلے کو بنیادی طور پہ سمجھنے میں جو خواتین و حضرات ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں انہیں ضرور کچھ نہ کچھ مدد ملی ہوگی کہ دین کچھ اور ہے اور مذہب وہ ہے جو ہم لوگوں نے زمین پہ بنا لیا. دین جو ہے وہ دین فطرت ہے، کیسے ہو سکتا ہے اس میں کسی چیز کا حل نہ ہو؟ یہ علیحدہ بات ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ اسے کیسے اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے یا اس کی نفی کرتا ہے. بہت بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا. آپ نے گفتگو سنی، اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.